पृष्ठ संख्या 174, त्रयोदश अध्याय, कांट के आलोचनात्मक विज्ञानवाद का शेष। बुद्धिवाद की नींव को सर्वप्रथम हिलाया लॉक के अनुभववाद ने। लॉक ने कहा कि हमारा सारा ज्ञान इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर है। बुद्ध की कोई सहज स्वतः सिद्ध और अनुभव निरपेक्ष धारणाएं नहीं हैं। सारा ज्ञान अनुभव सापेक्ष या अ पोस्टेरियोरी है। आत्मा कोरे कागज या अंधेरे कमरे के समान है, जिस पर अनुभव संवेदन और स्वसंवेदन रूपी उंगलियों से ज्ञान रूपी अक्षर लिखता है, या जिसमें संवेदन या स्वसंवेदन की खिड़कियों से ही ज्ञान रूपी प्रकाश भीतर जाता है। लॉक ने तत्व मीमांसा के पूर्व ज्ञान मीमांसा को आवश्यक माना। ईश्वर जीव और जगत के विषय में विचार प्रकट करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि हमारे ज्ञान की उत्पत्ति, प्रमाण और सीमा कैसे, क्यों और कहां तक है। बर्कले ने इसी के आधार पर बाह्य जगत का खंडन किया, प्रतीति को ही सत्ता माना और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय विज्ञान ही हैं। ह्यूम में यह अनुभववाद अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और आत्मघाती संदेहवाद बन गया। इसके आधार पर न ईश्वर का, न जीव का और न जगत का प्रतिपादन हो सकता है, क्योंकि इनमें से कोई भी इंद्रिय अनुभूति का विषय नहीं। संवेदन और विज्ञान ही हमारे ज्ञान के विषय हैं और इनके आधार पर ज्ञान में कार्य कारण भाव जैसे निश्चित सार्वभौम और असंदिग्ध नियम के लिए कोई स्थान नहीं। समस्त ज्ञान संभावना मात्र है। प्रारंभ में कांट पर लाइबनित्ज और ओल्फ का भारी प्रभाव था। केवल बुद्धि ही निश्चित और सार्वभौम ज्ञान उत्पन्न कर सकती है, इंद्रिय अनुभव नहीं। पृष्ठ संख्या 175। किंतु ह्यूम के प्रहारों ने बुद्धिवाद का प्रासाद ढहा दिया। कांट इस संदेहवाद से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि ह्यूम ने मुझे अंधविश्वास की मोह निद्रा से जगा दिया। कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद की निष्पक्ष आलोचना प्रारंभ की और वे इस परिणाम पर पहुँचे कि दोनों एकांगी हैं, कि दोनों में आंशिक सत्य है और आंशिक असत्य, और इसलिए दोनों असफल हुए हैं। दोनों में से किसी ने भी ज्ञान की उत्पत्ति, प्रमाण और सीमा को नहीं समझा। यद्यपि लॉक ने इसका प्रयत्न किया, किंतु उनका प्रयत्न मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मात्र रह गया, वास्तविक अन्वेषण नहीं। यदि बुद्धिवाद सत्य है तो फिर आधार और पद्धति एक होने पर भी विभिन्न निष्कर्ष क्यों निकाले जाते हैं? गणित के सिद्धांत भी, विशेषतः रेखागणित के, जिन पर बुद्धिवादियों की अगाध आस्था है, अपनी उत्पत्ति के लिए अनुभव की अपेक्षा रखते हैं, और फिर गणित तो अपने आप को वस्तु विज्ञान कहने का दावा नहीं करता, किंतु दर्शन करता है। फिर दर्शन को गणित का दास बनाने की क्या आवश्यकता? बुद्धिवाद की यह मान्यता कि जो भी विचार बुद्धि को स्पष्ट प्रतीत होता है वह सत्य है, अनिश्चित और अनुचित है। बुद्धिवाद दर्शन और धर्म दोनों क्षेत्रों में असफल हुआ है। इसका मूल कारण है इंद्रिय अनुभव की उपेक्षा करके बौद्धिक कल्पनाओं को ही मान्य समझना। बुद्धिवाद का पर्यवसान अंधविश्वास में हुआ है। उधर अनुभववाद भी सत्य नहीं है। यदि हमारा सारा ज्ञान इंद्रिय अनुभव से ही उत्पन्न हो और उस तक ही सीमित हो तो ह्यूम के आत्मघाती संदेहवाद के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। इंद्रिय अनुभव के आधार पर कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रिय अनुभव से केवल अस्त व्यस्त और क्षणिक संवेदन ही उपलब्ध हो सकते हैं, जो ज्ञान कहलाने के अधिकारी ही नहीं हैं। संवेदनों के आधार पर किसी निश्चित सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। ईश्वर और आत्मा जैसे अतींद्रिय पदार्थों को तो बात ही क्या, इंद्रिय अनुभव से तो बाह्य जगत की भी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। कार्य कारण भाव आदि सार्वभौम नियम भी नहीं बन सकते, और स्वयं संदेहवाद की भी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। किंतु हमें निश्चित और सार्वभौम नियमों का ज्ञान होता है। स्वयं ह्यूम ने भी गणित के ज्ञान को निश्चित माना है। उनका कथन यही है कि यह वस्तु जगत का ज्ञान नहीं, केवल विज्ञानों का संबंध मात्र है। किंतु यह सत्य नहीं, क्योंकि गणित भी अनुभव की अपेक्षा रखता है। और फिर प्रश्न यह है कि इंद्रिय अनुभव के आधार पर तो विज्ञानों के संबंध में भी निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 176। फिर तो निश्चित और सार्वभौम ज्ञान की कल्पना तक नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसा ज्ञान वस्तुतः सत्य है, केवल गणित के क्षेत्र में ही नहीं अपितु भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में भी। यह ज्ञान इंद्रिय अनुभव से नहीं आ सकता, यह बुद्धि विकल्पों से ही आता है। अतः यह कथन कि समस्त ज्ञान इंद्रिय अनुभव प्रसूत है मिथ्या है। इस प्रकार कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद के दोष दिखाए। अब उनके गुणों को बताते हैं। बुद्धिवाद का यह कथन कि हमें निश्चित और सार्वभौम ज्ञान होता है और यह ज्ञान इंद्रिय अनुभव से न आकर हमारी बुद्धि के स्वतः सिद्ध और सहज नियमों से आता है सत्य है। ज्ञान की सार्वभौमता, असंदिग्धता, निश्चितता और अनिवार्यता बुद्धि से ही आ सकती है, इंद्रिय अनुभव से नहीं। साथ ही साथ अनुभववादियों का यह कथन कि इंद्रिय अनुभूति के बिना सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, सत्य हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय हमारे संवेदन या विज्ञान ही हैं। जिस ज्ञान की सामग्री संवेदन से न आई हो वह ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता। अतः हमें व्यवहार का ही ज्ञान हो सकता है, अतिंद्रिय परमार्थ का नहीं। इस प्रकार बुद्धिवाद और अनुभववाद के गुण दोष दिखाकर कांट अपना समन्वयात्मक मत प्रस्तुत करते हैं। हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदन और बुद्ध विकल्प दोनों के सम्मिश्रण से बनता है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के लिए द्रव्य या मैटर और स्वरूप या फॉर्म की आवश्यकता होती है, जिनको उपादान कारण और स्वरूप कारण कहा जाता है। घट का द्रव्य या उपादान है मिट्टी और स्वरूप है उसकी विशिष्ट आकृति। केवल मृत्तिका से घट का काम नहीं चल सकता, और यदि मृत्तिका न हो तो भले ही कुम्हार के पास घड़े का सांचा हो घड़ा नहीं बन सकता। सोने की अंगूठी के लिए सोना और अंगूठी का सांचा जिसमें ढलकर सोना अंगूठी का रूप लेता है दोनों आवश्यक है। केवल सोने के डले को उंगली में नहीं पहना जा सकता, और यदि सोना न हो तो भले ही सुनार के पास अंगूठी का सांचा हो अंगूठी नहीं बन सकती। इसी प्रकार ज्ञान के लिए इंद्रिय संवेदन रूपी उपादान या द्रव्य की और बुद्ध विकल्प रूपी स्वरूप देने वाले सांचे की आवश्यकता है। बुद्ध विकल्प के अभाव में हमें केवल अस्त व्यस्त विशृंखल और असंबद्ध इंद्रिय संवेदनों की वेदना या फीलिंग मात्र होगी, और इस वेदना को जो पशुओं को भी होती है ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह निर्विकल्प इंद्रिय प्रत्यक्ष मात्र है, और प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाने का अधिकार इसे नहीं है। इस इंद्रिय संवेदन को ज्ञान बनने के लिए बुद्ध विकल्प के सांचे में ढलना पड़ता है। पृष्ठ संख्या 177। बुद्ध विकल्प इन अस्त व्यस्त विशृंखल और असंबद्ध इंद्रिय संवेदनों को संग्रहित करके इन्हें नियमित और संबद्ध ज्ञान का रूप देते हैं। इसीलिए ज्ञान सदा सविकल्प होता है। अनुमान तो सविकल्प है ही, प्रत्यक्ष ज्ञान भी सदा सविकल्प होता है। यदि इंद्रिय संवेदन न हो तो ज्ञान की सामग्री या उपादान के अभाव में बुद्ध विकल्प निष्क्रिय रहेंगे, और यदि बुद्ध विकल्प न हो तो इंद्रिय संवेदन असंबद्ध रहेंगे और ज्ञान नहीं बन सकेंगे। कांट की प्रसिद्ध उक्ति है, इंद्रिय संवेदनों के बिना बुद्ध विकल्प पंगु या शून्य है, और बुद्ध विकल्पों के बिना इंद्रिय संवेदन अंध है। हमारे ज्ञान में सत्यता या यथार्थता इंद्रिय संवेदनों के कारण आती है, क्योंकि इंद्रिय संवेदन हमारी कल्पना न होकर वास्तविक पदार्थों द्वारा उत्थापित किए जाते हैं। इसलिए इंद्रिय संवेदनों के अभाव में वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। हम परमार्थों को नहीं जान सकते। हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदनों और विज्ञानों तक ही सीमित है। अतः हमें व्यवहार का ही सत्य ज्ञान हो सकता है, परमार्थ का नहीं। हमारे ज्ञान में जो सार्वभौमता, निश्चय और अनिवार्यता होती है, वह बुद्ध विकल्पों से आती है, वह इंद्रिय संवेदनों से नहीं आ सकती। अतः हमारा व्यवहार का ज्ञान सदा सत्य और निश्चित होता है। हमारी आत्मा निष्क्रिय होकर इंद्रिय संवेदनों को ग्रहण नहीं करती, वह सक्रिय होकर अपने बुद्ध विकल्पों द्वारा इंद्रिय संवेदनों को ज्ञान का रूप देती है। इंद्रिय संवेदनों के अभाव में आत्मा को अपने बुद्ध विकल्पों द्वारा ज्ञान का रूप देने के लिए कोई सामग्री या द्रव्य उपलब्ध नहीं होता। अतः ज्ञान के लिए इंद्रिय संवेदन और बुद्ध विकल्प दोनों अनिवार्य हैं। ज्ञान सत्य और निश्चित होता है। सत्यत्व इंद्रिय संवेदनों से और निश्चय बुद्ध विकल्पों से आता है। हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदनों तक ही सीमित नहीं है, उसे ज्ञान बनने के लिए अतिंद्रिय बनना पड़ता है। स्वरूपतः अतिंद्रिय होने पर भी ज्ञान को अपनी सामग्री, द्रव्य या उपादान के लिए इंद्रिय अनुभव पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञान आत्मा का अपना स्वरूप है, जो उसके बुद्ध विकल्पों में अंतर्निहित रहता है। पृष्ठ संख्या 178। ज्ञान का स्वरूप बाहर से नहीं आता, ज्ञान का स्वरूप सार्वभौम, निश्चित और अनिवार्य है, और इसीलिए इंद्रिय अनुभव निरपेक्ष है। गणित शास्त्र और भौतिक विज्ञान शास्त्र के सार्वभौम और अनिवार्य नियम इसके प्रमाण हैं, किंतु इन अनुभव निरपेक्ष सार्वभौम नियमों को भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए अनुभव सापेक्ष होना पड़ता है। ये अनिवार्य नियम बीजवत हैं, जो बुद्धि रूपी क्षेत्र में विद्यमान हैं। इनको पल्लवित, पुष्पित और फलित होने के लिए इंद्रिय अनुभव रूपी खाद, जल और प्रकाश की आवश्यकता है। इंद्रिय अनुभव के अभाव में ये बीज वैसे ही पड़े रह जाते हैं, विकसित नहीं हो पाते। इंद्रिय अनुभव इनको उत्पन्न नहीं करता, केवल विकसित करता है। यही कारण है कि बालकों और मूर्खों को इन नियमों का ज्ञान नहीं होता। बुद्ध के सहज और अनुभव निरपेक्ष नियमों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। अतः बुद्ध के सार्वभौम, सहज और अनिवार्य नियम अपनी उत्पत्ति की दृष्टि से इंद्रिय अनुभव निरपेक्ष और अभिव्यक्ति की दृष्टि से इंद्रिय अनुभव सापेक्ष हैं। कांट की प्रसिद्ध उक्ति है, समस्त ज्ञान का आरंभ अनुभव से होता है, किंतु उसकी उत्पत्ति अनुभव से नहीं होती। बुद्धिवाद की तर्क पद्धति निगमनात्मक थी और अनुभववाद की आगमनात्मक। बुद्धिवाद के अनुसार दर्शन का मुख्य कार्य बुद्ध के स्वतः सिद्ध, सहज और सार्वभौम नियमों के आधार पर ईश्वर, जीव और जगत के विषय में निष्कर्ष निकालना मात्र है। अनुभववाद के अनुसार बुद्ध के कोई सहज और सार्वभौम नियम नहीं है, क्योंकि हमारा सारा ज्ञान इंद्रिय संवेदन से उत्पन्न होता है और संवेदनों के आधार पर कोई निश्चित तथा सार्वभौम ज्ञान नहीं हो सकता। अतः दर्शन का लक्ष्य इंद्रिय अनुभूति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। निगमन तर्क के वाक्य या प्रतिज्ञा इंद्रिय अनुभव निरपेक्ष या अप्रियोरी और वियोजक या विश्लेषक या एनालिटिक होते हैं। आगमन तर्क के वाक्य अनुभव सापेक्ष या अपोस्टेरियोरी और संयोजक या संश्लेषक या सिंथेटिक होते हैं। वियोजक वाक्यों में सार्वभौमता और अनिवार्यता होती है किंतु नवीनता नहीं। संयोजक वाक्यों में नवीनता होती है किंतु सार्वभौमता और अनिवार्यता नहीं। नवीनता से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और सार्वभौमता या अनिवार्यता से ज्ञान असंदिग्ध या निश्चित होता है। वियोजक वाक्य में विधेय या प्रिडिकेट, उद्देश्य या सब्जेक्ट में अंतर्निहित रहता है और वाक्य का कार्य उसे उद्देश्य के बाहर प्रकट कर देना ही है। विधेय के उद्देश्य की धारणा का विश्लेषण मात्र करने के कारण यह वाक्य विश्लेषक या वियोजक कहलाता है। पृष्ठ संख्या 179। उदाहरण के लिए त्रिभुज तीन भुजाओं वाली आकृति है। मनुष्य बुद्धि युक्त प्राणी है। जड़ पदार्थ आकाश में विस्तृत होता है आदि। इनमें विधेय उद्देश्य के लिए कोई नई बात नहीं बताता। तीन भुजाओं वाली आकृति होना त्रिभुज का स्वभाव है। बुद्धि युक्त होना मनुष्य का स्वभाव है और विस्तृत होना जड़ पदार्थ का स्वभाव है। इन वियोजक वाक्यों में निश्चित सत्य तो है किंतु इनसे नवीनता या ज्ञान वृद्धि नहीं प्राप्त होती। संयोजक वाक्य इंद्रिय अनुभव के आधार पर बनते हैं और उनमें नवीनता होती है, अर्थात उनसे कुछ नया ज्ञान मिलता है, किंतु वे सार्वभौम और निश्चित नहीं होते। उदाहरणार्थ सोमवार को लू चली थी, मंगलवार को पानी बरसा था, राम लंबा है आदि। इन वाक्यों में विधेय उद्देश्य के अंतर्गत नहीं रहता, अपितु उद्देश्य के संबंध में कुछ नई बात बताता है। लू चलना सोमवार का धर्म नहीं है और पानी बरसना मंगलवार का धर्म नहीं है। न हर सोमवार को लू चलती है और न हर मंगलवार को पानी बरसता है। इसी प्रकार लंबा होना मनुष्य का धर्म नहीं। हर मनुष्य लंबा नहीं होता, किंतु एक विशिष्ट सोमवार को लू चली, एक विशिष्ट मंगलवार को पानी बरसा और एक विशिष्ट मनुष्य राम लंबा है। इन संयोजक वाक्यों से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है किंतु ये निश्चित नहीं है, अर्थात इनमें सार्वभौमता नहीं। कांट के समक्ष मुख्य समस्या यह थी कि क्या ऐसे भी वाक्य हैं जो संयोजक होते हुए भी अनुभव निरपेक्ष हों, जो नवीन होते हुए भी सार्वभौम और निश्चित हो। शुद्ध ज्ञान की परीक्षा नामक ग्रंथ इस समस्या को लेकर ही प्रारंभ होता है। कांट का उत्तर है कि ऐसे वाक्य होते हैं जो हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं, किंतु संभावना मात्र नहीं होते, और जो अनिवार्य और सार्वभौम रूप से सत्य होते हैं किंतु वियोजक नहीं होते। ऐसे वाक्य संयोजक और अनुभव निरपेक्ष या सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट होते हैं। गणित विशेषतः रेखा गणित और भौतिक विज्ञान के सभी वाक्य स्वरूपतः संयोजक और अनुभव निरपेक्ष होते हैं। गणित के वाक्यों को लोग वियोजक तथा सार्वभौम और भौतिक विज्ञान के वाक्यों को संयोजक तथा संभावित मानते हैं। कांट के अनुसार यह अनुचित है। गणित के वाक्य भी संयोजक होते हैं और भौतिक विज्ञान के वाक्य भी सार्वभौम होते हैं। गणित की उपपत्तियां देश या स्पेस के अनुभव की अपेक्षा रखती है और गणित के सिद्धांत वस्तु जगत में भी लागू होते हैं। भौतिक विज्ञान के सिद्धांत अनुभव सापेक्ष होने पर भी सार्वभौम और निश्चित होते हैं। अतः गणित और भौतिक विज्ञान के सिद्धांत अपने स्वरूप की दृष्टि से अनुभव निरपेक्ष एवं सार्वभौम होते हैं और इस स्वरूप की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अनुभव सापेक्ष एवं संयोजक होते हैं। पृष्ठ संख्या 180। यही कारण है कि इनमें संयोजक होने पर भी सार्वभौम और असंदिग्ध सत्य रहता है। ये सिद्धांत स्वतः सिद्ध और अनिवार्य कार्य कारण भाव संबंध पर आश्रित होते हैं। अतः इनमें भी अनिवार्य सत्य का होना अनिवार्य है। मनुष्य मरणशील है, जड़ पदार्थ का परिमाण होता है, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, इत्यादि वाक्य संयोजक और सार्वभौम है। ये हमें नई बात बताते हैं और उस बात में सार्वभौमता और अनिवार्यता है। इस ज्ञान की सामग्री इंद्रिय अनुभव उपस्थित करता है और बुद्धि विकल्प इस सामग्री को सार्वभौम नियम के रूप में परिणत करता है। प्रत्येक वैज्ञानिक प्रतिज्ञा में एक अंश इंद्रिय संवेदन द्वारा प्रस्तुत होता है और दूसरा अंश बुद्धि विकल्प द्वारा। बुद्धिवाद इसे भूल जाता है कि जन्मांध व्यक्ति को रूप का बोध नहीं हो सकता। अनुभववाद इसे भूल जाता है कि मूर्ख व्यक्ति की सर्वोत्तम इंद्रियां भी उसे सार्वभौम ज्ञान का बोध नहीं करा सकती। आलोचनावाद संवेदन की सामग्री को और बुद्ध विकल्प की सार्वभौमता को स्वीकार करता है और इन दोनों के संयोजक तथा अनुभव निरपेक्ष वाक्यों के लिए आवश्यक मानता है। इस ज्ञान की सामग्री अनुभव प्रसूत है, किंतु इस ज्ञान का स्वरूप अनुभव जन्य नहीं है। इसका स्वरूप बुद्ध के सहज सार्वभौम और अनिवार्य नियमों से बनता है। यह तभी संभव हो सकता है जब बुद्धि और बाह्य जगत में सामंजस्य हो। बुद्धि अपने सहज विकल्पों द्वारा बाह्य जगत का सफल और सार्वभौम ज्ञान प्राप्त कर लेती है। भौतिक विज्ञानों की सफलता इस बात को बताती है कि बाह्य जगत को सुव्यवस्थित तथा नियमित करने में बुद्धि का हाथ है। मनुष्य मरणशील है, यह वाक्य इंद्रिय अनुभव तक सीमित नहीं। इंद्रिय अनुभव से हम 2, 4, 10, 20, 100, 200 मनुष्यों को मरणशील देख सकते हैं, किंतु भूत वर्तमान और भविष्य के समस्त मनुष्यों को मरणशील कहते ही इंद्रियानुभव की सीमा का अतिक्रमण हो जाता है। यह सार्वभौम सत्य अनुभव पर प्रतिष्ठित नहीं है। यह कार्य कारण भाव रूपी बुद्ध के सहज नियम पर आधारित है। साथ ही यदि इंद्रिय अनुभव द्वारा कुछ मनुष्यों की मरणशीलता का ज्ञान हो तो यह सहज नियम अभिव्यक्त नहीं हो सकता। अनुभववादियों का यह कथन कि हमारा सारा ज्ञान इंद्रिय संवेदनों से उत्पन्न होता है सर्वथा असत्य है। हमारी बुद्धि इंद्रिय संवेदनों को निष्क्रिय होकर ग्रहण नहीं करती। बुद्धि कोरा कागज या अंधेरा कमरा नहीं है। पृष्ठ संख्या 181। बुद्धि अपने सहज नियमों से इंद्रिय अनुभव के व्यवस्थित और नियमित करके उसे सार्वभौम ज्ञान का रूप देती है। कांट का यह मत दर्शन शास्त्र में कॉपरनिकस जैसी क्रांति माना जाता है। कॉपरनिकस के पहले पश्चिम में यह मत प्रचलित था कि पृथ्वी स्थिर है और सृष्टि का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस ने सिद्ध किया कि सृष्टि का केंद्र सूर्य है, कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस मत को पाश्चात्य ज्योतिर्विद्या में कॉपरनिकस की क्रांति कहते हैं। कांट ने भी दर्शन के क्षेत्र में कॉपरनिकस जैसी क्रांति उपस्थित की। कांट के पहले अनुवादियों की यह मान्यता जम चुकी थी कि मानवीय बुद्धि निष्क्रिय होकर इंद्रिय संवेदनों को ग्रहण करती है, कि हमारे ज्ञान को प्रकृति निर्मित करती है, कि हमारा ज्ञान अनुभव की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। कांट ने बताया कि मानवीय बुद्धि सक्रिय होकर इंद्रिय संवेदनों को व्यवस्थित और नियमित बनाती है, कि हमारी बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, कि हमारा ज्ञान अपने स्वरूप में सदा अतिंद्रिय होता है। प्रकृति के अस्त व्यस्त विशृंखल और क्षणिक संवेदनों को संग्रहित करके उनको व्यवस्थित नियमित और नित्य ज्ञान के रूप में परिणत करना मानवीय बुद्धि का ही कार्य है। प्राकृतिक नियमों की सार्वभौमता और अनिवार्यता बुद्धि से ही आती है। यह सत्य है कि पारमार्थिक स्वलक्षणों का ज्ञान नहीं होता और हमारा ज्ञान अपने इंद्रिय संवेदनों की सामग्री तक ही सीमित रहता है। किंतु इस सामग्री को व्यवस्थित एवं नियमित करना हमारी बुद्धि का ही कार्य है। बुद्धि प्रकृति के पास शिष्य बनकर नहीं जाती, वह न्यायाधीश के समान प्रकृति से प्रश्न पूछती है और उनका उत्तर देने के लिए प्रकृति को बाध्य करती है। भौतिक विज्ञानों के सार्वभौम नियम इस बात के साक्षी हैं। कांट की प्रसिद्ध उक्ति है, बुद्धि प्रकृति को नियमित करती है। प्रकृति के असंबद्ध और क्षणिक संवेदनों को संबद्ध, व्यवस्थित और नियमित ज्ञान का रूप देकर प्राकृतिक नियमों में सार्वभौमता तथा अनिवार्यता लाना बुद्धि का ही कार्य है। इसीलिए गणित में और भौतिक विज्ञानों में संयोजक और अनुभव निरपेक्ष वाक्यों द्वारा सार्वभौम सत्य प्रतिष्ठापित किया जाता है। गणित के नियम स्वतः सिद्ध हैं, भौतिक विज्ञानों के नियम अनुभव से सिद्ध किए जा सकते हैं। अतः गणित और भौतिक विज्ञान की बुद्धिजन्य सार्वभौमता अनिवार्य है। अब प्रश्न यह है कि जिस प्रकार गणित में और भौतिक विज्ञानों में संयोजक तथा अनुभव निरपेक्ष वाक्यों द्वारा सार्वभौम और सत्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है, क्या उसी प्रकार दर्शन में भी सार्वभौम और सत्य ज्ञान मिल सकता है? पृष्ठ संख्या 182। क्या दर्शन के वाक्य भी संयोजक और अनुभव निरपेक्ष हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कांट दर्शन को दो क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, एक तो व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यवहारिक क्षेत्र में ज्ञान की सामग्री इंद्रिय संवेदनों द्वारा आती है। पारमार्थिक क्षेत्र में इंद्रिय संवेदनों की गति नहीं है, यहाँ ज्ञान अपने ही विकल्पों को नियमित करता है। अतः व्यवहार में संयोजक और अनुभव निरपेक्ष वाक्यों द्वारा सत्य और सार्वभौम ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किंतु परमार्थ में विषय अतिंद्रिय होने के कारण सत्य और निश्चित ज्ञान संभव नहीं। ईश्वर, जीव और जड़ तत्व आदि अतिंद्रिय हैं, इनके विषय में जो ज्ञान हमें होता है उसकी सामग्री अनुभव जन्य नहीं होती। इस ज्ञान को अनुभव से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इंद्रिय संवेदन के अभाव में हम यह नहीं जान सकते कि इस ज्ञान के विषय वस्तु जगत में भी है या नहीं। अतः ईश्वर, जीव और जगत का प्रतिपादन करने वाला दर्शन शास्त्र गणित और भौतिक विज्ञानों के समान कभी सत्य और निश्चित ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। परमार्थ क्षेत्र में हमारा ज्ञान संभावना मात्र है।